سلوک جو بہت ضروری ہے وہ یہی ہے. باطن کی جو احوال ہے وہ ایک اعتبار سے ہمارے اختیار میں نہیں. حسد نکالنا ہمارے حسد ہے کہ جب جیتا ہے حسد لیا جب جیتا ہے یہ اس کا کان پکڑا اور اس کے کان پکڑ کے مروڑا اس کو ایزا پہنچا. تو یہ مروڑنا بھی اختیار میں ہے اور نہ مروڑنا بھی اختیار میں ہے. تو کوئی اگر مجھے کہے کہ یہ کان جو مروڑ رہے ہیں یہ تو ناجائز ہے, ایزا پہنچ رہی ہے ایک انسان کو ایک مسلمان کو, اور میں فیصلہ کروں کہ مجھے اب نہیں کرنا ہے توبہ کر دو, یہ میرے اختیار میں. لیکن حسد کی برائی سنی, کبر کی برائی سنی, کسی غیر محرم کی محبت دل میں ہے اس کی برائی سنی, بخل کی برائی سنی اور دل میں قباحت اور شناعت بھی پیدا ہوئی اور پکا ارادہ بھی کر لیا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے میرے اندر, لیکن آپ کے اختیار میں نہیں. تو باطن کے جو رضائل ہیں وہ بھی غیر اختیاری ہیں اور باطن کے فضائل بھی غیر اختیاری. اس پر پھر آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ پھر غیر اختیاری چیز کا حکم کیوں ہوا, یا غیر اختیاری پر سزا اور جزا کیوں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بلا واسطہ اس کو نکال دینا اور بلا واسطہ اس کو لے آنا یہ غیر اختیاری ہے. کان پکڑ کے مروڑنا یہ بلا واسطہ اختیاری, اور چھوڑ دینا یہ بلا واسطہ اختیاری. جبکہ قلب میں اخلاص کو اتارنا اور ریا کو نکالنا یہ بل واسطہ اختیاری ہے. اگر تم یہ 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 سبب اختیار کرو گے تو اس چیز سے نجات مل جائے گی. تو اس اعتبار سے اختیاری ہو گئے. جیسے محبت, تو محبت طبعی جو ہے وہ تو اختیاری نہیں ہے, محبت عقلی اختیاری ہے. اور اگر بہت ہی صاحب کمال ہو تو محبت طبعی بھی اختیاری ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ کہ محبت کے اسباب پر غور کرو. محبت نہیں ہے ان سے, لیکن محبت پیدا کرنے کے لیے مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو آخرت کی نجات تو ان سے محبت کرنے میں ہے. یہ آپ کے استاد ہیں, ان سے محبت نہیں ہوگی تو کیسے علم حاصل ہوگا؟ یہ آپ کے شیخ ہیں, ان سے محبت نہیں ہوگی تو تزکیہ کیسے ہوگا؟ تو بھائی کیسے محبت کروں؟ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ اس کے اسباب اختیار ہے. تو فضائل سے دل کو مزین کرنے کے اسباب اختیاری ہے, اور رضائل سے دل کو پاک کرنے کے اسباب اختیاری ہے. تو اس اعتبار سے اختیاری ہو گیا. اب سوچے کہ ان میں کمالات کیا ہے, ڈھونڈیں, کسی سے پوچھے, اگر جمال ہے تو اس پر غور و فکر کرے. اور جمال میں بھی جو ہے صرف چہرہ تھوڑا ہے. کسی کو نماز سے مناسبت ہے تو اس کی نماز دیکھے گا کہ وہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں, وہ بھی تو ایک جمال ہے. کسی کو فٹ بال سے مناسبت ہو تو فٹ بال اچھے انداز سے کھیلنے والے کا جمال اس کے سامنے آتا ہے, وہ بھی جمال بھی ہے کمال بھی ہے. وہ تو کمال جمال احسان کے بارے میں سوچے, بڑے کے بارے میں تو بہت احسانات کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے, ماں باپ کے بارے میں, چھوٹوں کے بارے میں بھی احسان کرتا. میرا بچہ بہت فرما بردار ہے, ڈانٹتا ہوں تو برا نہیں لگاتا, میری خدمت کرتا ہے. تو یہ باطن کے جو رضائل ہیں ان کو نکالنا ہے اور باطن کے فضائل کو دل میں لانا ہے. اس کا نام ہے تزکیہ, تخلیہ اور تحلیہ کا نام ہے تزکیہ. اب یہ کوئی کہے گا کہ غیر اختیاری, اختیاری کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اسباب اختیاری. اور اسباب کیا ہے؟ وہ طاعات جو کہ اختیاری ہے ان کو بجا لانا, یہ پہلا قدم. डूज को करना, डोंट से बचना, अवामिर को बजा लाना, नवाही से बचना, इसका असर रजाइल और फजाइल पर पड़ेगा। सबसे बड़ा सबब यह, मेन सबब यही है। दूसरा सबब कसरत में जिक्र, तो तीसरा सबब सहबत साथ है। इसे तीन काम कर लीजिए। और एक चीज जो शर्त के दर्जे में हो गया है, इत्तिला व इत्तिबा, तो इत्तिला व इत्तिबा से पता चलेगा कि अवामिर और नवाही ठीक जा रहे हैं या नहीं, और अवामिर और नवाही में किसी जगह मगलूब है तो कैसे कदर दिया जाए नफ्सो शैतान को। और सोहबत सालेह का कोई फायदा भी हो रहा है या नहीं, कसरत जिक्र का कोई फायदा भी हो रहा है या नहीं, वो अहवाल बतलाने से शेख को मालूम होता रहेगा। तो शेख जो है उसके मुताबिक फिर कमी बेशी करेगा, मशवरे देगा, राय देगा। और इन तीनों कामों को करने से अल्लाह ताला शानों को रजाइल को जाहिर भी करते हैं, खुद सालिक पर भी और शेख पर भी। तो वो इस्लाह भी करेगा जब आप इत्तिला और इत्तिबा करेंगे। तो इस तरह जो है फिर ये इस्लाह हो जाएगी। अल्लाह ताला शानों को हमें तौफीक दे, हमारे लिए आसान फरमाए। इसलिए मामूलात की पाबंदी हो, और मामूलात की पाबंदी के साथ फिर कसरत जिक्र हो जितना ज्यादा हो सके, चलते फिरते अल्लाह को याद करते रहे। अगर हाफिज है और जय्यद हाफिज है तो तिलावत में मशगूल हो जाए, अपने तीन सिपारे पढ़ लेने के बाद मजीद पढ़े, चार पढ़े, पांच पढ़े, छह पढ़े, किसी दिन छह हो गए, किसी दिन सात हो गए, किसी दिन तीन हो गए, किसी दिन दस हो गए, दुरूद शरीफ में किसी का दिन लगता है तो दुरूद शरीफ की कसरत करें। यही कि जुमा का दिन है और तीन सिपारे हो गए तो कभी आज दुरूद शरीफ की कसरत करें। मसनून दुआओं का बहुत एहतमाम है, दुआ का एहतमाम है, और गुनाहों से बचना, गुनाहों से बचना, झूठ बोलना न बोलना इख्तियार है आपके इख्तियार में, बदनजरी करना न करना आपके इख्तियार में, शराब पीना न पीना इख्तियार में, जुआ खेलना न खेलना इख्तियार में, फिल्म देखना न देखना इख्तियार में, धोखा देना न देना इख्तियार में। तो नफ्स और शैतान कितने ही तकाजा करे फिर भी इख्तियार में। पर इख्तियार में है उसकी दलील भी। आप अपने बेडरूम में छुप कर भी फिल्म देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर, और किसी के आने की आहट सुनी तो फौरन बंद कर दिया आपने, मालूम हो गया आपके इख्तियार में। शैतान और नफ्स ने आपको जो मगलूब कर दिया था, जो आपको महसूस हो रहा था कि नहीं मैं मगलूब हूं, मगर आपने फिर गलबा दिया, मालूम हुआ कि आपके पास ताकत है। लेकिन हसद है आपके दिल में, और सिंसियरली आप हसद नहीं चाहते, और इस वक्त आप निकालना चाहे नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, वो अंदर ही रहे। उसके लिए असबाब चाहिए, इनके लिए असबाब नहीं है। पर असबाब बदला दिए, असल सबब यही है कि जाहिरी ताआत में जितना बढ़ता चला जाएगा, तो जाहिरी ताआत में जितना बढ़ता चला जाएगा मैं दोनों चीजें आ गई, फराइज वाजिबात का एहतमाम, हराम और मकरूहात तहरीम से बचने, और बाकी ताआत भी जो नफल मुस्तहब सुन्नत है उसमें भी जितना बढ़ता चला जाएगा तो उतना ही उसका रिएक्शन होगा, रजाइल दबते चले जाएंगे और फजाइल को उरूज नसीब होगा। असल इलाज यही है। और ये जो इलाज है उसको पुख्ता करने के लिए उरूज है कसरत जिक्र और सोहबत साले। जाहिर है कि कसरत जिक्र मतलूब है, कसरत जिक्र, अगर कसरत जिक्र है तो गफलत खुद ब खुद मिट जाए, इसलिए कि कसरत जिक्र और गफलत दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती, इसलिए वहां सिर्फ कह देगा कसरत जिक्र। लेकिन चूंकि बुरी सोहबत और अच्छी सोहबत जमा हो सकती है, इसलिए यहां यह कहना पड़ेगा कि अच्छी सोहबत को इख्तियार करना, बुरी सोहबत से बचना, ये दोनों काम करने जरूरी है। ये दोनों चीजें जमा हो सकती है कि एक घंटा किसी के पास अच्छे आदमी के पास बैठे, एक घंटा बुरे आदमी के पास बैठे, लेकिन कसरत जिक्र आ गया तो गफलत तो खत्म हो गई। और ये दोनों चीजें मुईन है जाहिरी ताअत के लिए या जाहिरी ताअत के लिए या गुनाहों से बचने के लिए, और एक चीज मुजिर है, एक चीज मुजिर है, और वह है लायानी। लायानी गुनाह की तरफ ले जाएगी, और अगर दो दो बना देना हो तो चार चीजें हो जाएगी कि असल चीज तो गुनाहों से बचना है और गुनाहों से बचकर दूसरे नवाफिल सुनन वगैरह को भी बजा लाने, असल ताअत है। और ताअत के लिए दो चीजें मुफीद है, सोहबत साले और कसरत जिक्र। और ताअत के लिए दो चीजें मुजिर हैं, बुरी सोहबत और लायानी, ये पांच चीजें होंगी। पर इसको करते हुए किसी माहिर से अपना राब्ता रखना और इत्तिला और इत्तिबा का मामला रखना। तो रफ्ता रफ्ता ये चीज काबू में आएगी। अब जो है आखिरी बात, आखिरी बात यह है कि जो भी अमल वजूद में आता है, जो भी अमल, वो या तो रजीले की वजह से आता है या फजीले की वजह से आता है। अंदर जो रजीला है वो सबब बन रहा है किसी भी मासियत का, जाहिरी मासी जितने भी हैं पूरा रजीले पर डिपेंड करता है। अच्छाई वजूद में आ रही है वो अंदर जो फजीला है उसकी वजह से। अगर कोई रजाइल से पाक हो जाता है तो उसकी जिंदगी से आमाले बस खत्म हो जाते हैं, इसलिए कि जड़ है वो। और फजाइल से आरास्ता हो जाता है तो उसकी जिंदगी आमाले सालेहा से भर गई। और जितनी जितनी फजाइल की तरक्की होती रहती है उतना उतना जाहिर में आमाले सालेहा बढ़ते चले जाते हैं। लंबी लंबी नफलें, लंबी लंबी तिलावत, लंबी लंबी दुआएं, इस शुरू शुरू में जो ताआत हम करते हैं रजाइल को दूर करने के लिए और फजाइल को दिल में लाने के लिए, इसमें मशक्कत इसलिए होती है कि अंदर ऐसा कोई फजीला नहीं है जिसकी वजह से अमल वजूद में आ रहा है, तो आप बतकल्लुफ कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं। और इस जबर के नतीजे में अंदर से रजीला दूर होगा और अंदर फजीला आएगा, फजाइल आएंगे, फिर जो अमल होंगे ये अमल या इससे भी लंबे लंबे कमियत के एतबार से उसमें तकलीफ नहीं होगी, मशक्कत होगी मगर तकलीफ नहीं होगी। ये जो शुरू में मेहनत करना है वो बगैर किसी सपोर्ट के करना है, इससे कि दिल तो नहीं चाहता, दिल तो हमारे बक की तरफ ले जाना चाहता है, और आप जबर करके उसे, इससे कि अंदर जो फजीला का इंजिन है वो तो है ही नहीं फजाइल का इंजिन, तो ये आप मशक करिए, जो ये मेहनत करते हैं मशक इसी का मैं मुझे लगता है कि नतीजे में वो चीज हासिल होती है, फिर ऑटोमेटिक वो गाड़ी चल पड़ती है, वो फिफ्थ गियर में आ जाएगी। और फिर तरक्की होती रहेगी, फिर मुजाहदा बहुत कम न होने के बराबर, मुजाहदा तो होगा मगर बहुत कम। पहले मुजाहदे में तकलीफ महसूस होती है, उसके बाद वाले जो मुजाहदे होते हैं उसमें फरहत महसूस होती है। जैसे एक शख्स जो है उसे आप सजा दें, या वो बीमार था, बीमारी के बाद उसको सेहत की तरफ लाने के लिए आप कह दें कि रोजाना आपको एक मील चलना है, तो वो चलेगा मगर फरहत नहीं होगी। और 90 मिनट तक एक शख्स फुटबॉल खेलता है वो उससे ज्यादा थकेगा जिसको एक मील चलना है, लेकिन चूंकि वो सेहतमंद है इसलिए वो हर सेकंड एंजॉय करेगा खेलने में। जब 90 मिनट खत्म हो जाती है तो उसके दिल में ऐसा ख्याल आता है कि और थोड़ा खेल लेते तो अच्छा होता, मगर ताब होगा, बदन में मशक्कत होगी, इसी मशक्कत के बदले में तो आखिरत में अजर सवाब मिलेगा। तो तफक्कर कदमा, बस ये शुरू का मुजाहदा है वो आदमी, जबर करे अपने ऊपर, गिबत न करे। गिबत हो जाए तो अब गिबत से बचने में जो मशक्कत थी उससे ज्यादा मशक्कत अब बर्दाश्त करो, ताकि दूसरी मरतबा ये गिबत न करे। और वो है कि जाकर के माफी मांग लो कि गिबत हो रही है आपकी, माफ कर दी। हो सकता है कि उसको खोटा लगे, बुरा लगे, लेकिन अल्लाह उसके दिल को आपकी तरफ माइल कर देंगे 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद। जितना भी आप मुजाहदा करें गुनाह से बचने का, और गुनाह अगर हो जाए तो उसके तदारुक का, इससे तज़किया होगा। अल्लाह ताला शानहू हमें तौफीक दे, मेरी मदद।